तो तात्पर्य है कि कहा कि भाई अंत में विकसित होने के लिए पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा, अंत तो गत्वा हमें इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। तो हम क्यों लतारे खाते रहे, 200 वर्ष तक क्यों लतारे खाते रहे, या लक्ष लक्ष वर्षों तक हम लतारे खाएं, अपनी टांग तुड़वाएं, पीड़ा और कष्ट का अनुभव करें, इससे क्या बेहतर नहीं है कि खड्डों और खाइयों से बचते हुए हम स्थिर कदमों से धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर चले जाने और आनंद का भोग करें। कि जब उस लक्ष्य पर पहुंचना ही है तो एक स्थिति हो सकती है कि हम प्रकृति के प्रवाह में अपने को छोड़ दें, प्रकृति जैसा हमें रखे वैसा हम चलें, अगर कोई लात हमें मारता है तो लात खा लें, हमारी टांग टूटती है तो टांग टूटने का दुख हम सह लें। और एक दूसरा है जहां पर हम इन बाधाओं को दूर करते हुए पुरुषार्थ के द्वारा इसका अतिक्रमण कर लें और बाधाओं को दूर करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं स्वस्थ रहते हुए। तो मनुष्य आखिर जब उसी लक्ष्य को ही प्राप्त करेगा तब दुख भोग करके क्यों करेगा और दीर्घ अवधि तक दुख भोग करके क्यों करेगा, वह अपनी अवधि को छोटा क्यों न कर ले, यह समय को क्यों कम न कर ले और स्वस्थ रहते हुए क्यों न इसका आनंद ले ले, यह प्रश्न उठता है। इसीलिए वेदांती कहता है कि तुम इस प्रक्रिया की गति को बढ़ा दे सकते हो और उस लक्ष्य को अपने जीवन में शीघ्र प्राप्त कर सकते हो। यही तरीजित सर्गो ये शाम शाम में सतम मनहा, गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण इसी जीवन में वे सर्ग को जीत लेते हैं, देखाओं का रिलेटिविटी, सापेक्षता को जीत लेते हैं, ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं इसी जीवन में जीत लेते हैं, हमें इसी जीवन में जीत लेना है। कहा है उपनिषद में, ऋषि तो बारम्बार कहते हैं ये चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति न चेद इहा वेदी महती विनस्ति, यदि इस जीवन में सत्य को जान लिया तब तो उससे परम लाभ नहीं है और यदि इस जीवन में सत्य को जान नहीं लिया तो उससे परम विनाश भी नहीं है, उसकी अपेक्षा कोई अधिक विनाश नहीं हो सकता, और यदि इस जीवन में हम सत्य को जान लेते हैं उसकी अपेक्षा कोई परम लाभ नहीं होता, वह सबसे बड़ा लाभ है। और यह कहा गया कि इसी जीवन में हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि यह जो शास्त्र है वह पुरुषार्थ पर बल देता है, हम पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मानसिक विकास को एक दिशा दे सकते हैं और उस गति को तीव्र बना दे सकते हैं, यह हमारे भीतर में रूढ़ है। मनुष्य के भीतर में इन दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण है, उसमें पुरुषार्थ की भी शक्ति है और वह कहीं पर कुछ बंधा हुआ भी है, इन दोनों का वह अनुभव करता है, पर इस बंधन के भीतर इस सीमा के भीतर वह कर्म करने में स्वतंत्र है, यह भी सत्य है। अब एक उद्यमी व्यक्ति है वह अपनी प्राप्त स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है तो उसको अधिक मात्रा में स्वतंत्रता मिल जाती है। श्री रामकृष्ण से एक भक्त ने पूछा, महाराज कहते हैं आप भी कहते हैं कि साधना करनी चाहिए, पर क्या मनुष्य अपने कर्मों से बंधा नहीं है, क्या वह सचमुच साधना कर ले सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो यह भी ठीक है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, पर यह भी ठीक है कि वह कर्म करने में स्वतंत्र भी है। भक्त ने कहा महाराज ये दो विरोधी बातें हैं, ये दो विरोधी बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? श्री रामकृष्ण ने उदाहरण देकर के कहा कि एक उदाहरण मैं बताता हूं, इसके बल पर तुम समझ लोगे कि ये दोनों विरोधी बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। उन्होंने एक उदाहरण बताया, एक चरवाहा है लंबी रस्सी से अपनी गाय को बांध करके चराने के लिए जंगल में जाता है और रस्सी चूंकि लंबी है उसे मोड़ देता है, मोड़ करके दूसरे छोर को बांध देता है एक वृक्ष से और स्वयं चला जाता है किसी दूसरे वृक्ष की छांव में और वहां पर लेटा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है और इधर यह गाय चर रही है। अब यह जो गाय चर रही है वह चरने में स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है, यह दोनों एक साथ। भक्त ने पूछा कैसे? श्री रामकृष्ण ने कहा कि देखो यदि उस रस्सी की लंबाई 50 फीट की है तो 50 फुट के घेरे में यह गाय घास करने के चरने के लिए स्वतंत्र है, परंतु 50 फुट के घेरे के बाहर की घास वह नहीं चर सकती, इसके लिए वह परतंत्र है। वह स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है, जो 50 फुट का घेरा है उस घेरे के भीतर में यह जो गाय है घास चरने के लिए स्वतंत्र है, चाहे तो 50 फुट दूरी की घास चरे वृक्ष से, चाहे 30 फुट दूरी की, चाहे बिल्कुल वृक्ष के पास की घास चरे, इसमें वह बिल्कुल स्वतंत्र है। परंतु एक जगह वह परतंत्र है, यदि गाय चाहे कि मैं 51 फुट दूरी की घास को चरूंगी तो वह नहीं चर सकती, क्योंकि वह रस्सी की लंबी से बंधी हुई है, रस्सी की लंबाई भी उतनी है। 50 फुट की लंबाई है, इसलिए उस घेरे को तोड़ करके नहीं जा पाती। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो यदि यह गाय अपनी प्राप्त स्वतंत्रता का सदुपयोग करे और जितनी घास उसे उपलब्ध है उतनी घास को ठीक ठीक चर ले, तो चरने के बाद जब गाय रंभाती है, चरवाहा उठ करके देखता है कि गाय ने सारी घास चर ली, वह आता है और रस्सी की लंबाई को बढ़ा देता है, अधिक घेरे में वह गाय को स्वतंत्र कर देता है। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि गाय घास चरती तो है पर पूरा नहीं चरती है, बीच में रंभाती है, चरवाहे ने उठ करके देखा, अरे अभी तो बहुत सी घास बाकी है, वह उस रस्सी की लंबाई को बढ़ाने के लिए आता नहीं है, वो वैसे ही पड़ा है, ठीक है अभी तो बहुत घास है बाकी, गाय पहले चर ले। श्री रामकृष्ण कहते हैं ठीक, बस इसके द्वारा ही तुम्हारे प्रश्न का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि यह जो गाय है उसको तुम जीव समझ लो, यह जो रस्सी की लंबाई है उसको तुम भाग्य समझ लो, जिसको तुम नियति कहते हो, कर्म की डोर कहते हो, यह भाग्य है, और जिसको चरवाहा तुम देख रहे हो उसको तुम ईश्वर समझ लो। इसके द्वारा तीनों बातें सुलझ जाती हैं, गॉड, डेस्टिनी और फ्री विल। ये देखने में तो तीनों बिल्कुल विरोधी मालूम पड़ते हैं कि ईश्वर, फ्री विल और डेस्टिनी, एक को मानने से दो को हम कैसे मानेंगे? यदि ईश्वर को हम मानते हैं तो फिर डेस्टिनी और फिर उसी प्रकार फ्री विल, इन दोनों को कैसे मान सकते हैं? और यदि हम फ्री विल को मानते हैं, इच्छा स्वातंत्र को स्वीकार करते हैं, तो हम भाग्य में और ईश्वर में विश्वास कैसे रख सकते हैं? पर श्री रामकृष्ण इन तीनों विरोधी बातों को जोड़ देते हैं, देख लिया तुमने, बस इसी प्रकार यह जो जीव है जैसे गाय बंधी हुई है और उस बंधन में भी उसको स्वतंत्रता है, इसी प्रकार जीव बंधा तो जरूर है पर उस बंधन के भीतर में उसे स्वतंत्रता है। अब यह जीव के पुरुषार्थ पर है कि उस मिली हुई स्वतंत्रता का वह सदुपयोग करता है अथवा नहीं करता। गाय अगर घास पूरी चल लेती है तो अपनी मिली स्वतंत्रता का पूरा सदुपयोग कर रही है, अगर गाय घास को चरती नहीं है पूरी तो फिर हम कहेंगे कि वह अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं कर रही है, और यदि वह अपनी स्वतंत्रता का पूरा पूरा सदुपयोग करती है तो चरवाहा प्रसन्न होता है, वह रस्सी की लंबाई को बढ़ा देता है, अधिक घेरे में गाय को स्वतंत्र कर देता है। तो इसी प्रकार यह जो जीव है अपनी सीमित स्वतंत्रता का जिस समय सदुपयोग करता है, ईश्वर उसकी स्वतंत्रता की परिधि को और बढ़ा देते हैं, वह अधिक घेरे में स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसा जो पुरुषार्थी जीव है एक दिन समस्त घेरे को पार कर जाता है, ईश्वर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कह देते हैं ले तेरी रस्सी मैंने पूरी खोल दी, तो मुक्त हो गया वह, जीवन मुक्त हो गया, उसके जीवन के सारे बंधन स्खलित तो हो गए, वह स्थिति। तो दोनों बातें सत्य हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि यह जो मनुष्य के भीतर में है, तो यह जो मनुष्य जब जो कार्य करेगा तो कैसे करता, उसके भीतर में पुरुषार्थ की वृत्ति। तो इसलिए हम यह कह रहे थे कि मनुष्य योनियों में यह पुरुषार्थ नहीं है बने हुए, ये तो सब भोग योनियां हैं, जिस पिछली बार चर्चा की, हम देवलोक में जाते हैं देवता बनते हैं वह भी भोग योनि है, मनुष्य से जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, केवल कर्म योनि या मनुष्य योनि है, यहां पर हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से बने हैं। जो भाग्यवादी हम में होता है, दुर्भाग्य से हम हिंदू लोग भाग्यवादी कहे जाते हैं क्योंकि हमने भाग्य को बहुत बड़ा दर्जा दे दिया, और इसमें यह होता है कि जो भाग्यवादी होता है वह फिर पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करता, वह कहता है देखो जी सब अपने अपने कर्म से बंधे हैं, कर्म से बंधे हैं कि हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं ठीक, पर यह भी मानते हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं मानते कि हम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन एक उदाहरण देते हैं अपने उस बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ में भारतीय दर्शन में, वे कहते हैं कि यह जो भाग्य है और पुरुषार्थ है इसको कैसे समझाया जा सकता है। मनुष्य ताश खेलने के लिए बैठे हैं, अब मेरे हाथ में पत्ते आ गए, यह तो मेरा भाग्य है, ये जो पत्ते मुझे मिले हैं ये मेरा भाग्य है, अब इन पत्तों के द्वारा मैं खेल कैसे खेलूंगा, यह मेरा पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ है कि मनुष्य को जो मिला है वह उसका भाग्य है, पर वह जो भाग्य उसे मिला है उसका सदुपयोग कैसा करता है वह उसका पुरुषार्थ है। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य पूरी तरह से बंधा है, और अगर हम यही स्वीकार करें कर्म का सिद्धांत यह कहता हो कि मनुष्य पूरी तरह से बंधा है पिछले जन्म में उसने जो कर्म किया उसके कारण यह जीवन मिला, अभी मैं जो कर्म कर रहा हूँ, भाई मेरी ये जो वृत्तियाँ हैं पूर्व जन्म के कारण ये पैदा हुई हैं, इसलिए मैं अपनी वृत्तियों को नहीं सुधार सकता। इसका मतलब यह होगा कि अगर मैं अभी नहीं सुधार सकता, अभी मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे जो संस्कार निकलेंगे वे संस्कार मेरा अगला जन्म निर्धारित करेंगे, तो मैं कहीं पर भी स्वतंत्र नहीं, मैं हर समय बंधन में हूँ। तो इस समय मैं बंधन में हूँ, मैं पिछले जन्म के कर्मों से बंध करके इस जन्म के कर्म करता हूँ, और इस जन्म के जो मैं कर्म कर रहा हूँ वे अगले मेरे जन्म को तैयार कर दे रहे हैं, तो सब जगह तो बंधन ही हो गया। तो ऐसा बंधन यह हमारा हिंदू धर्म नहीं है, यह कर्मवाद नहीं है। इसको कर्मवाद नहीं कहते कि मनुष्य बंधा हुआ हो, कर्मवाद का मतलब यह है कि मनुष्य अपने कर्मों को सुधारने में स्वतंत्र है। इसका क्या मतलब? इसका एक बहुत बेहतर मतलब हो जाता है, संस्कार, कर्मों का संस्कार। इसका मतलब होता है कर्मों का संस्कार, मैं कर्म करता हूं और मैं जो कर्म करता हूं तो उनके पीछे मेरी जो भावना होती है ये भावना संस्कारों को जन्म देती है। संस्कार कैसे पैदा होते हैं? यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसका क्या मतलब कि मेरा यह जो जीवन है, यह जो जीवन दिखाई देता है बहुत ठीक है, यह जो जीवन दिखाई देता है तो पूर्व कर्मों ने मेरे लिए यह जीवन की रूपरेखा बना दी है और मैं यहां पर आया हुआ हूं, यह ठीक है। पूर्व जन्म में मैंने कर्म किए, उन कर्मों के संस्कार पड़े और उन संस्कारों के कारण मेरा अगला जन्म निश्चित हुआ और मैं इस जन्म में आया हूं, और अभी जो मैं कर्म करता जा रहा हूं उससे मैं अपने अगले जीवन को निश्चित कर ले रहा हूं, और इस प्रकार मेरा चलता रहेगा। तो यह जो चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, जब तक मैं यह नहीं समझ लेता कि मैं शरीर और मन से भिन्न आत्मा, तब तक यह क्रम चलता ही रहेगा। और इसी ज्ञान की अनुभूति के लिए मुझे जन्म पर जन्म मिलता है कि मैं शरीर और मन इन दोनों से भिन्न आत्म तत्व हूं, जिसका न जन्म है, जिसका न मरण है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। यह हमारे पुनर्जन्म का सिद्धांत है। और यह कर्म की परंपरा हमको प्राप्त होती है किस लिए? कि कर्म हमें करने पड़ते हैं, हम कर्म करते हैं किस लिए? इस संस्कार, यह जो मन है, यह जो मनोयंत्र हमें मिला है, उस मनोयंत्र को मानो मांझने के लिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाने के लिए हमें यह जन्म की परंपरा मिली। क्या मतलब? जैसा हमने पिछली बार कहा था कि यह जो मनोयंत्र है, यह मनोयंत्र हमें प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है यह मनोयंत्र? कहां से प्राप्त हुआ है यह मनोयंत्र? हमें प्राप्त हुआ है अमीबा के भीतर में भी मनोयंत्र था, मनोयंत्र वहां पर प्रकट उतना नहीं हो पाया था, उसका विकास नहीं हो पाया था। धीरे 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 यह मनोयंत्र विकसित होता है, पर मनुष्य में आकर के पूरा जो विकास है मनोयंत्र का वह मानव जीवन में ही साधित होता है। जब तक मनुष्य योनि तक विकास का प्रवाह नहीं आया, तब तक यह जो मन का विकास है यांत्रिक है, वह प्रकृति के नियमों के अनुसार साधित होता है। पर जो ही मनुष्य योनि में यह विकास का प्रवाह आया कि यहां जो मन का विकास है यह उसके पुरुषार्थ पर, मनुष्य के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो इस विकास को तीव्र गति से साधित कर ले और चाहे तो उसे वैसा ही पड़े रहने दे। यह अंतर है। और इसीलिए हमने कहा कि जो आज का विकासवादी भी यह मानता है कि इवोल्यूशन का प्रवाह जिस समय मनुष्य में प्रवेश करता है उसके बाद वह मैकेनिकल नहीं रह जाता, उसके बाद वह मेंटल हो जाता है, मानसिक हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने मन के विकास की गति को बढ़ाने में सक्षम है, वह बढ़ा सकता है। यही मन का विकास, पिछली बार हमने उदाहरण दिया था कि मनुष्य अपने मन के विकास को बढ़ा ले सकता है, उसकी गति को बढ़ा ले सकता है। यही साधना है, हम मन के विकास को बढ़ाते हैं। तो यह जो विकास का मतलब है उसका मतलब क्या? मन का विकास और आत्मा की अभिव्यक्ति, यही तो कहा था मैंने। हम जो जिस विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं उसका मतलब यह है कि इसमें मन का विकास होता है और जैसे जैसे मन का विकास होता है वैसे वैसे आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। कि आत्मा कोई प्रकट नहीं होती कि आत्मा का जन्म हो गया, ऐसा नहीं। कि आत्मा तो वहां पर है परंतु आत्मा का प्रतिबिंब ठीक नहीं पड़ रहा है। जैसे आईने पर धूल और कीचड़ सना हो तो वहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, और जैसे जैसे हम धूल और कीचड़ साफ करते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर बहुत अस्पष्ट है, धुंधला है। हम और साफ करते हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट होता जाता है। जब पूरी तरह से हमने दर्पण को साफ कर लिया, हम जैसे हैं वैसा ही दिखाई देता है। तो ठीक इसी प्रकार हम मन को मांझने का प्रयास करते हैं। यह जो विकास का क्रम हमें प्राप्त हुआ है मन को मांझने के लिए, मन को धोने के लिए, और जिस दिन हम मन को पूरी तरह से मांझ लेते हैं, मन के भीतर की धूल पूरी तरह से निकल जाती है, मन का मल प्रक्षालित हो जाता है, या जो आत्म स्वरूपता है हमारी वह अपने आप को वैसे ही प्रतिबिंबित करती है। जैसे आपने देखा होगा स्फटिक, स्फटिक अगर आपने देखा हो तो स्फटिक वह जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, आप यदि उसके सामने लाल फूल रख दें तो वह स्फटिक पूरा लाल रंग का दिखाई देता है, पीला फूल रख दें तो स्फटिक पीले रंग का दिखाई देता है। तो मन को इसी प्रकार स्फटिक जिस समय हम बनाते हैं धो मांझ करके, जब वह आत्मस्वरूप को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है, वह आत्मा के समान ही दिखाई देता है। इतनी शुद्धता मन की हो जाती है। इसी दृष्टि से श्री रामकृष्ण कहा करते थे शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक है। कहते कि यह जो इस पर जो संस्कार, यह जो जन्म का संस्कार है, तो यह पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म होता है मन के संस्कारों के कारण। मन के संस्कार बनते हैं, कर्म के संस्कार बनते हैं, विचार के संस्कार बनते हैं। यह जो मनुष्येतर योनियां हैं उसमें इंस्टिंक्ट की प्रबलता है। वहां पर ये जो मनुष्येतर योनियां हैं वे कर्म योनियां क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ये जितने भी प्राणी हैं अपने इंस्टिंक्ट के बल पर काम करते हैं, सहज वृत्ति के बल पर काम करते हैं, इसलिए वहां पर जिसे हम कहेंगे कि इंटेलेक्ट नहीं, वह केवल इंस्टिंक्ट, हमने उसके इंस्टिंक्ट को ठीक ठीक मानो गाइड कर दिया है, मानो ठीक ठीक उसके इंस्टिंक्ट को दिशा दे दी है। जैसे हम सिंह को सिखाते हैं, सर्कस में हम इन भिन्न भिन्न प्राणियों को शिक्षा देते हैं, ये क्या बुद्धि के बल पर करते हैं? नहीं, वो इंस्टिंक्ट के बल, मानो दिखा दिया गया है उनके भीतर में इंस्टिंक्ट है, सहज वृत्ति है, और सहज वृत्ति के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, और सहज वृत्ति से जो कार्य होता है उस कार्य का कोई संस्कार नहीं पड़ता। तो किसका संस्कार पड़ता है? बुद्धि वृत्ति से किए जाने वाले कार्य का संस्कार पड़ता है। जहां पर हम सजग होकर के चेतन होकर के कार्य करते हैं, सहज वृत्ति से कार्य नहीं बल्कि हम सजग होकर के कार्य करते हैं, तो जहां पर हम इंटेलेक्चुअली काम करते हैं वहां पर उसके संस्कार करते हैं, उसको कहते हैं बुद्धि वृत्ति। ये दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, सहज वृत्ति बुद्धि वृत्ति। सहज वृत्ति से काम जो होता है उसका कोई संस्कार नहीं पड़ता, संस्कार पड़ता है बुद्धि वृत्ति के द्वारा काम किए जाने से। तो जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं वे सहज वृत्ति से परिचालित होकर के काम करते हैं, केवल मनुष्य ही ऐसा है जो बुद्धि वृत्ति के द्वारा काम करता है। इसके लिए वहां पर संस्कार पड़ता है। कैसा पड़ता है? क्या कर्मों का संस्कार पड़ जाता है? कर्म का संस्कार नहीं पड़ता, भावना का संस्कार पड़ता है। कर्म के पीछे जैसी भावना होती है उस भावना का संस्कार पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति है वह सेवा कर रहा है, एक विधवा है कम उम्र की, वह उसकी सेवा करने जाता है, देखता है कि इसका पति मर गया है, घर में कोई नहीं है इसके देखने वाले, तो वह एक सेवा की वृत्ति लेकर के जाता है। ठीक है कि भाई तुमको क्या जरूरत है, वह भी सेवा करता है। एक दूसरा व्यक्ति है वह भी सेवा करता है। अब समझिए कि पहले व्यक्ति के मन में वासना है, वह अपनी वासना का किसी प्रकार भी चरितार्थीकरण करना चाहता है, वह कहता है कि ठीक है इस विधवा को मैं इस प्रकार कृतज्ञता के भार से मैं दबा दूं, इसका मानो इसकी सहायता करते करते तो फिर एक दिन वह मेरी ओर उन्मुख हो जाएगी, फिर जैसा मैं कहूंगा वैसा वह करेगी, उसके भीतर में यह भाव है। और दूसरा व्यक्ति वह निस्वार्थ सेवा करता है, सचमुच में बहुत दुखिया है, उसके जीवन में कोई नहीं है, चलो भाई हम ही एक वहां पर एक मदद बनकर के आ जाते हैं, वह सचमुच सेवा करता है। अब ये जो दोनों व्यक्ति सेवा कर रहे हैं ऊपर से तो कोई भेद तो दिखाई नहीं देता, यह भी सेवा करता है, दूसरा व्यक्ति भी सेवा करता है, तो बाहर से यदि हम देखेंगे तो ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो दोनों में किसी प्रकार का भेद स्थापित कर सके, सेवा के कर्म ठीक हो रहे हैं।
तो क्या दोनों को जो संस्कार हैं, दोनों के संस्कार एक ही समान बनेंगे? कर्म तो एक ही प्रकार के हैं, पर ये जो दोनों के कर्म हैं, क्या दोनों कर्मों के संस्कार एक ही होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जिस व्यक्ति के मन में वासना है, वह जो वासना से युक्त होकर के कर्म कर रहा है, उसके कर्मों से संस्कार भिन्न ही बनेंगे। और जो व्यक्ति सचमुच सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है, उसके संस्कार बिल्कुल भिन्न बनेंगे। यह बिल्कुल सही है। और मनुष्य अपने मन को छलने की कोशिश करता है। कोई अगर कह दे यदि ये दोनों व्यक्ति मेरे पास आते हो और मैं अगर किसी प्रकार मनोभाव को टाल लूं, और अगर मैं कहूं कि देखो तुम लोग जाते हो उस विधवा के पास, तुम लोग उसकी सेवा करते हो ठीक है, पर सावधान रहना तुम्हारे मन में किसी दिन कोई राक्षस न घुस जाए। अपने मन को तार करके जाना, टाल वहां पर जाकर के अपना आत्मविश्लेषण करो, तो जो सचमुच सेवा की वृत्ति से कार्य कर रहा है उसको तो यह उपदेश खराब नहीं लगेगा, पर जिसके मन में वासना है उसको वह उपदेश खराब लगेगा। और वह बराबर अपने मन को समझाने की कोशिश करेगा, मैं तो सचमुच सेवा के लिए ही जाता हूं, उसका कोई नहीं है, उसको मैं केवल सहायता देने के लिए ही जाता हूं। वह अपने मन के साथ छल कर सकता है, वह दुनिया को छक सकता है, पर हमारा मनोयंत्र ऐसा अद्भुत है कि मनोयंत्र के साथ मनुष्य छल नहीं कर सकता। मैं आपको ठग सकता हूं, दुनिया के हर व्यक्ति को ठग सकता हूं, अपने को सन्यासी और महात्मा के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं, पर मैं अपने मन को नहीं ठग सकता। मेरा मन जानता है कि तू पाखंडी है अथवा सचमुच का महात्मा है, या मेरा मन बता देता है। मेरा मन कहता है कि तू माला तो फेर रहा है, पर तेरे मन के भीतर में क्या है? तेरे बाहर के कर्म तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर अंदर में साधुता है कि नहीं है, या मेरा मन अंकित करके बताता है। तो जो संस्कारों का अंकन होता है वह कर्म के अनुरूप नहीं होता। कर्म के पीछे जो भावना होती है, उस भावना के अनुरूप हमारे इस मनोयंत्र पर कर्म का संस्कार पड़ता है। और मनोयंत्र इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है, इतना प्रिसाइज है, इतना खरा है कि उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती। एक बार मैं भूल कर सकता हूं अपने मन को समझने में, मैं अपने को छल कर ले सकता हूं। एक बार मन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर दूंगा कि नहीं नहीं ये जो तुम कर रहे ठीक ही कर रहे हो, पर मन के भीतर से कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। मेरा मन कहता है ठीक नहीं जा रहे हो तुम। मानो मन के मेरे दो भाग हो गए, एक अच्छा भाग और एक बुरा भाग। अच्छा भाग सतर्क कर देता है, तुम अपने को छल रहे हो, तुम अपने को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सावधान रहो। या मन मुझे बता देता है, इसका मतलब यह है कि इस मनोयंत्र के साथ छल नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमारे मन में विचार उठते हैं उसी मानो कर्म के पीछे जो विचार होते हैं, उन विचारों के अनुरूप कर्म का संस्कार करता है। तो इसका मतलब यह है कि हम कहें कि हमने कर्म किया तो उससे संस्कार हो गया, ठीक है, कर्म से संस्कार नहीं हुआ, कर्म के पीछे में जो भावना थी उस भावना से संस्कार हुआ। पशु में कोई भावना नहीं होती, पशु में भावना नहीं होती, भावना बुद्धि वृत्ति से उपजती है, पशु में कोई भावना नहीं होती। यदि पशु प्यार भी दिखाता है तो सहज वृत्ति से प्रेरित होकर के दिखाता है, उसके भीतर में भावना नहीं होती। एक कुत्ता अपने मालिक को खतरे में जान करके मालिक को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है तो वह भावना से नहीं दौड़ता है, उसके भीतर इंस्टिंक्ट ही वैसे है, वह सहज वृत्ति से परिचालित हो रहा है। और इसीलिए कुत्ते के भीतर में कोई पाप और पुण्य नहीं है। अगर कुत्ता किसी को काट खा लेता है तो उसे पाप नहीं लगा, अगर कुत्ता किसी को बचा देता है तो उसे पुण्य भी नहीं लगा, क्योंकि वह सहज वृत्ति से परिचालित होता है। पर यदि एक मनुष्य किसी का घात करता है तो उसे मानो संस्कार उसका वैसा पाप का बन गया, यदि किसी को बचा लेता है उसे पुण्य के संस्कार प्राप्त होते हैं। यह होता ही है। तो यह जो हमने कहा कि जो संस्कार हमें जो लगते हैं, यह जो पुनर्जन्म होता है, यह संस्कारों का सिद्धांत है। तो संस्कार कैसे बनते हैं? कर्म से नहीं बनते। संस्कार बनते हैं कर्म के पीछे जो हमारी भावना होती है, उस भावना के अनुसार यह संस्कार बनता है। तो ठीक है, हम कर्म करते हैं तो मृत्यु के समय क्या होता है? जैसे मनुष्य की मृत्यु होने को है तो क्या होता है? जन्म जन्मांतर के जितने उसके संस्कार हैं वे सब के सब आकर के प्रकट हो जाते हैं। सब छिपे हुए थे, आकर के ये सारे खड़े हो गए। बाहर की दृष्टि से वह मनुष्य मृत के समान हो गया है, पर भीतर वह जगा हुआ है। उसके मन के सारे संस्कार आकर के खड़े हो गए अब इन संस्कारों में जो प्रबल संस्कार जीवन के रहे हैं वे अलग हो जाते हैं, और ये जो अलग हो जाते हैं ये प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। तात्पर्य क्या कि मेरे तो जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हैं, अब इस जन्म में भी मैं संस्कार अर्जित कर रहा हूं, कर्म करता हूं तो कर्म के पीछे जैसी भावना है उसके अनुरूप संस्कार होते हैं, और उसी प्रकार मैं विचार भी मन में करता हूं तो उसके भी संस्कार होते हैं, मन में सोचता हूं उसके संस्कार होते हैं या नहीं होते। ठीक है, मैंने कर्म किया, कर्म करता हूं भावना के साथ, एक व्यक्ति है उसको मैं दुख पहुंचाना चाहता हूं, मेरे मन में उसके प्रति विद्वेष है और मैं उसे मारता हूं, तो वह जो मैंने कर्म किया है तो उसके पीछे मेरी भावना है, उस भावना का संस्कार मुझे लगेगा। अब मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति को गोली से मार देता हूं, विद्वेष है, और मैं ऐसी देख रहा था अपनी पिस्तौल को, थोड़ा ऐसा साफ कर रहा था, अचानक उसका ट्रिगर दब गया, गोली चल पड़ी और वह किसी व्यक्ति का गोली घात कर देती है। अब कर्म तो दोनों समान है, मैं अपनी पिस्तौल को साफ कर रहा था और मुझे मालूम नहीं था कि यह पिस्तौल भरी हुई है, अचानक मैं ट्रिगर दबा देता हूं और गोली निकल करके व्यक्ति को मार डालती है, इसका कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई भावना है ही नहीं, मेरे मन में कोई भावना नहीं थी, या मैंने गोली जो चलाई है वो गोली मैंने जानबूझ करके नहीं चलाई है, मेरे मन में उस कर्म के पीछे कोई भावना नहीं थी, तो उसका कोई संस्कार मुझे नहीं लगेगा। पर वही गोली चलाता हूं विद्वेष से भर करके, उसके प्रति प्रतिशोध से भर करके गोली चलाता हूं, तो यह जो गोली चलाता हूं तो यह इसके संस्कार जुड़ेंगे। तात्पर्य यह है कि यह जो कर्म के संस्कार जुड़ते हैं तो भावना के कारण। अच्छा अच्छा, मैं अगर केवल विचार करूं मन से ही, अब जैसा है ठीक है, मेरे मन में बहुत विद्वेष है और उस विद्वेष को मैं कर्म में क्रिया में परिणत नहीं होने देता, तो क्या इसका भी संस्कार लगता? लगता है, जरूर लगता है कि मैं किसी के प्रति विद्वेष का पोषण करता हूं, उसका हित हो जाए, वह मर जाए, उसको लकवा मार जाए, होता है ना? आपने देखा होगा जिसके मन में ऐसा चलता रहता, रास्ते से चलता है तो ऐसे ऐसी उंगलियां हिलती और कुछ बोलता जाता है, देखा होगा आपने, मन उसके भीतर में मन है, यही कहता हूं उसको देख लूंगा, अच्छा है ठीक है बताऊंगा, मजे से खाऊंगा, बाहर पता नहीं चलता करता चला जा रहा है, यही ये सब विचार उठ रहे, कर तो नहीं रहा है, क्रिया तो कुछ नहीं कर रहा है, पर उसके मन में ये भावनाएं तो उठ रही हैं, इन भावनाओं का भी संस्कार होता है। मतलब यह है कि केवल कर्म का कोई संस्कार नहीं होता, भावनाओं का संस्कार होता है, और भावना के साथ अगर कर्म जुड़ा होता है तो उसका अधिक तीव्र परिणाम होता है, तो इसके संस्कार होते हैं। तो ऐसे संस्कार हमने अर्जित किए, अब ऐसे मैं जन्म जन्म से संस्कार अर्जित कर रहा हूं, मृत्यु की वेला आती है, ये सारे जन्म जन्मांतर के संस्कार एकदम आकर के खड़े हो गए। अब जो जीवन के प्रबलतम संस्कार होते हैं ये मानो अलग हो जाते हैं, और ये जो अलग हो गए कैसे होते हैं, किसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं, कैसे हो गए या कोई बता नहीं पाता कैसे हो गए। अब ये तारा और ग्रह ये जो चलते हैं कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं इसको कौन बता सकता है, ये नियम को कौन बता सकता है, ये ऐसे नियम है यह तो कोई बता सकता है, पर ऐसा नियम क्यों है, वैज्ञानिक क्या बता सका है क्यों है का, क्यों है का उत्तर नहीं है उसके पास, क्या है उसको बता सकता है, क्यों है इसको नहीं बता सकता। तो ये जो एक प्रबलतम जो संस्कार है वे अलग हो जाते हैं, तो ये जो अलग संस्कार हो गए प्रबलतम, इसको कहते हैं प्रारब्ध, और यह प्रारब्ध क्या करेगा, यह प्रारब्ध मेरे अगले जन्म को निश्चित करेगा, इस प्रारब्ध के बल पर मेरा अगला जन्म निश्चित होगा, और बाकी क्या होगा, बाकी बचा है, सभी के सभी संस्कार प्रारब्ध नहीं बनते, प्रबल संस्कार प्रारब्ध बनते हैं और जो बचे हुए संस्कार है वे संचित कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं संचित, और यह जो प्रारब्ध बन गया, जो बलवान संस्कार है वे प्रारब्ध बन जाते हैं, और प्रारब्ध बन करके क्या करते हैं, अभी मैं आत्मानंद हूं, मेरी जो सूक्ष्म देह है, मेरी सूक्ष्म देह का आकार भी, यह जो स्थूल आकार है बहुत कुछ उसी प्रकार का है, योगी लोग उसे देख लेते हैं, योगी लोग देख लेते हैं मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वह जो सूक्ष्म शरीर का आकार होता है मानो इसी प्रकार का, यह तो स्थूल है शरीर और मन का अंतर क्या है? स्थूल और जैसे यह हमारा स्थूल शरीर बाहर का, इसको हम कहते हैं स्थूल जड़। इसी प्रकार इसके भीतर है हमारा मनोमय शरीर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या लिंग शरीर कहते हैं। तो वह क्या है? वह है सूक्ष्म जड़। दोनों ही जड़ है, शरीर और मन दोनों के दोनों जड़ हैं। एक स्थूल जड़ कहलाता है, दूसरा सूक्ष्म जड़ कहलाता है, और एक तीसरा शरीर है जिसको कहते हैं कारण शरीर। ये तीन प्रकार के शरीर हो गए। एक है स्थूल शरीर माने हमारे या बाहर का शरीर, इसके भीतर का वह मन वाला शरीर जिसको हमने सूक्ष्म शरीर कहा, और उसके भीतर में कारण शरीर। क्यों भाई, कारण शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी?